मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 15 सितंबर 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के जहां तक विषय का सवाल है, आप सब पहले से ही जानते हैं कि आज मैं किस विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं। और सच पूछे तो मुझे कल शाम को रात में जब मैं ईमेल देख रहा था तो यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बहुत से स्टूडेंट ने पहले से ही इस विषय को बहुत वेलकम किया है और बड़ी उत्सुकता से इस विषय की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट की कि इस विषय को कई एपिसोड में बताया जाए, यानी कि काफी विस्तार से बताया जाए। मित्रों, आपकी जो यह जिज्ञासा है और आपकी यह जो आवश्यकता भी है, इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। और सच पूछे तो अगर मैं अपनी उस उम्र के दौर में चला जाऊं जिस उम्र के दौर में अभी आप हैं, या कोई भी चला जाए और ईमानदारी से स्वीकार करे, तो वह आपकी जरूरत को खुद के अंदर झांक कर बड़े आराम से महसूस कर सकता है। और मैंने ये भी देखा है फ्रेंड्स कि मैडम प्रीति अग्रवाल के पास जो फोन आते हैं लाइफ मैनेजमेंट को लेकर के, मैं समझता हूं कि उसमें लगभग एक चौथाई यानी कि 20-25% फोन तो केवल इसी समस्याओं से संबंधित होते हैं, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया गया अफेयर। अफेयर का मतलब होता है जैसे कि कोई मामला हो गया हो, जबकि ये मामला कुछ है नहीं। सच बात यह है कि केवल इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। और मुझे तो बहुत ज्यादा यह बात महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है कि अगर इसे थोड़ा सा समझ लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए, तो आप देखेंगे कि यही समस्या जो बनी हुई है, यह ऊर्जा जो समस्या बनी हुई है, हमारे लिए कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। और याद रखें कि समस्याओं में ही शक्तियां छुपी होती हैं, क्योंकि जब हम समस्याओं का निदान करते हैं तो उसी प्रोसेस में हमारी जो शक्ति है उसमें इजाफा होता है। और मित्रों, यही सोचकर मैंने एक किताब भी लिखी है जिसकी चर्चा मैं अपने लाइफ मैनेजमेंट में इससे पहले भी कई बार कर चुका हूं, जिसका शीर्षक है प्रेम की समझ, स्टूडेंट और प्रेम की समझ। स्पेशली स्टूडेंट के दिमाग में प्रेम के बारे में जो धारणाएं बनी हुई हैं, जिस तरीके से वे उसको लेकर परेशान रहते हैं, जिस तरीके से वे उसको हैंडल करते हैं, उन सब में प्रवेश करके, यानी कि उनकी मानसिकता में प्रवेश करके मैंने अपनी बातें उसमें कही हैं। तो पहली बात तो यह दोस्तों कि मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट इस तरह के विषयों पर बात करने की जरूरत महसूस कर रहा है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, उन्हें यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारी समस्याओं के निदान आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, मेरा आज का जो विषय है वो समस्याओं के समाधान के बारे में बताना इनफैक्ट नहीं है। मैं तो आज इस बात पर बात करने जा रहा हूं कि कैसे जो प्रेम है अपने आप में एक बहुत जबरदस्त ऊर्जा है। और सच पूछे तो इसके बारे में मैं सिद्धांतों की भाषा में बात न करके कुछ उदाहरणों की भाषा में बात करना चाहूंगा। और मित्रों, मुझे लगता है कि हमारा जो इतिहास है प्रेम को ऊर्जा में बदल देने वाले प्रसंगों से जबरदस्त रूप से भरा हुआ है, समृद्ध है, अद्भुत है। और आज मैं जिस प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों, वह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। और मैं मानकर चलता हूं कि आप में से काफी गोस्वामी तुलसीदास जी के इस प्रसंग से बहुत अच्छी तरह परिचित भी होंगे। मैं थोड़ी सी उस प्रसंग की चर्चा कर लूं, फिर मैं इसकी अपनी तरफ से व्याख्या करूंगा। मित्रों, आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। बरसात के दिन थे तो अब उन्हें नदी पार करके जाना था, तो कहा जाता है कि उस नदी में एक शव तैर रहा था, शव बह के जा रहा था, तो उस शव पर वो बैठ गए और नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। और बारिश हो रही है, अंधेरी रात है, ठीक है, उस तट पर पहुंच गए। फिर वो अपने ससुराल पहुंच गए तो उनका ससुराल मल्टी स्टोरीड रहा होगा, अब उनको ऊपर जाना था। अब कैसे ऊपर जाएं, बहुत मुश्किल महसूस हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि कोई एक रस्सी जैसी चीज लटक रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि इस रस्सी को पकड़ करके ऊपर जाया जा सकता है। उन्होंने उसे पकड़ा और वो ऊपर भी पहुंच गए, और ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि सामने तुलसीदास खड़े हैं। तो इस पर वो नाराज हुई। सबसे पहले तो उन्होंने यही जानना चाहा कि तुम ऊपर आ कैसे गए। तो उन्होंने कहा कि वो तुमने रस्सी लटका रखी थी, मैं वो रस्सी पकड़ करके ऊपर आ गया। और सच पूछिए तो वो लटकती हुई रस्सी देख करके तुलसीदास जी बेहद खुश हुए थे, यह सोचकर कि मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है और देखो उन्होंने मेरे आने के लिए रस्सी लटका रखी है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई रस्सी नहीं लटका रखी थी, तो फिर वो रस्सी है क्या? वो जा करके देखते हैं तो वो रस्सी की जगह पर एक सांप लटक रहा था, राइट? मतलब तो सांप को पकड़कर वो ऊपर आ गए थे। अब देखिए कहानी कितनी सही है कितनी गलत है उसका विश्लेषण मत कीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम तो केवल प्रेम की उनमें कितनी तीव्रता थी इसको इसमें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, और वही इंपॉर्टेंट है, राइट? उनकी पत्नी देखकर चौंक गई कि तुमको कुछ हो गया होता तो। और सच पूछे तो इससे वो अभिभूत नहीं हुई कि तुलसीदास मुझसे कितना प्रेम करते हैं, बल्कि वो नाराज हुई। और नाराज होकर के उन्होंने कहा कि तुमको जितना प्रेम मुझसे है, इस शरीर से है, हार्ड मांस के इस देह से है, अगर इसका थोड़ा सा भी अंश ईश्वर के प्रति होता तो तुम पता नहीं क्या से क्या बन जाते, क्या से क्या हो जाओगे। तुलसीदास जी को यह बात लग गई, उनका बिल्कुल मोह भंग हो गया। कहां तो वो ये समझ रहे थे कि पत्नी उनका वेलकम करेगी, और कहां उन्हें यह सुनने को मिल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफियां कर रहे हो। तो मित्रों इसके बाद तुलसीदास जी लौट गए, और फिर आप जानते हैं कि तुलसीदास क्या हुए, हमारे सामने प्रमाण है। तुलसीदास कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो इस तरह के महाकवि हैं इस हिंदुस्तान के, जिनका प्रभाव आज भी नागरी और लोक जीवन पर देखा जा सकता है, उनके रामचरितमानस और उनका हनुमान चालीसा, और बाकी तो दूसरे ग्रंथ और हैं ही। अब आप देखें कि उन्होंने क्या किया। मित्रों वो अपनी पत्नी से नाराज भी हो सकते थे, इस बात को लेकर वो बहस भी कर सकते थे और शिकायत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे उस रूप में नहीं लिया, राइट? वो देवदास भी बन सकते थे। आप शरदचंद्र जी की किताब देखिए देवदास, देवदास के चरित्र को आप जानते ही हैं कि वो प्रेम में असफल होकर, असफल तो नहीं कहना चाहिए, सफल होने की तो गुंजाइश उसके सामने थी, उसने अपना कदम नहीं बढ़ाया, वो कायर किस्म के प्रेमियों के रूप में जाने जाते हैं देवदास जी हमारे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। और यही हम धर्मवीर भारती के किताब गुनाहों के देवता में देखते हैं, उनके उपन्यास में, कि वहां भी जो करेक्टर है वो लगभग देवदास के आसपास के ही है, उतने लचर तो नहीं है लेकिन उसके आसपास के हैं। तो एक तरफ हम देवदास को देख रहे हैं, एक तरफ हम कालिदास को देख, आपके तुलसीदास को देख रहे हैं। तुलसीदास और देवदास दोनों अलग अलग छोर पर खड़े हुए हैं, और ये दोनों में प्रेम है, और प्रेम की ऊर्जाओं के आपको दो विपरीत ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, दो विपरीत रूप दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास ने उसी प्रेम को अपनी ऊर्जा में तब्दील करके और कितना शक्तिशाली बना दिया, वो इतिहास पुरुष बन गए। और देवदास ने उसी प्रेम को डाउनग्रेड करके, कमजोर करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, शराब की बोतलों में अपनी पूरी जिंदगी को उतार दिया। मित्रों अब दोनों चीजें हमारे सामने हैं, दोनों प्रमाण हमारे सामने हैं। तुलसीदास जी की कथा तो एक सच्ची कथा है, हाँ देवदास की जो कथा है वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है हम कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चरित्र के दो ये पक्ष हैं जो, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप देखिए मित्रों कि कैसे जो व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं वही उनके साहित्य में आता है। आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, इतना मोटा ग्रंथ है, और उसके बिल्कुल आखिरी दोहे पर चले जाएं आप, बिल्कुल रामचरितमानस के जिस दोहे से उन्होंने इतने महान ग्रंथ का समापन किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कामिही नारी प्यारी जिमी लोभही प्रिय जिमी दाम तैसे हूं मोही निरंतर प्रिय लागहू मोरे राम। अब आप सोच के देखिए कि वो कह क्या रहे हैं, वो राम से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मुझे कितना प्रिय लगो, तो कह रहे हैं कि मुझे तुम उतना प्रिय लगो, उसी तरह से प्रिय लगो जैसे कि एक कामुक व्यक्ति नारी से प्रेम करता है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जिस तरीके से एक कामुक व्यक्ति नारी से प्रेम करता है, और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, और जैसे एक लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, हे मेरे राम तुम मुझे उसी तरह से प्रिय लगो। यानी कि जो घनिष्ठता है, कामुकता का नारी के प्रति घनिष्ठता है, आवेग है, और इसी तरह से लोभी व्यक्ति का धन के प्रति घनिष्ठता है और आवेग है। मैं वही घनिष्ठता आपके प्रति चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर वही भावना हो। तो मित्रों, लोभ व्यक्ति को छोटा बना देता है, लेकिन यहां वो बड़े बनने की बात कह रहे हैं कि अगर यही लोभ राम के प्रति हो गया, यही लोभ अच्छे उद्देश्यों के प्रति हो गया, यही प्रेम राम के प्रति हो गया। अब देखिए, प्रेम तो वही है, चाहे वो नारी के प्रति हो रहा है, चाहे उद्देश्य के प्रति हो रहा है, चाहे राष्ट्र के प्रति हो रहा है, किसी के प्रति हो रहा है, भावना तो वही है। लोभ में भी एक तरह के प्रेम की ही कहीं ना कहीं प्रतीति है। वो प्रेम हम नहीं कहते, लेकिन धन के प्रति उसका प्रेम है, जिसको आप लोभी कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, प्रेम तो एक ही है ना, तत्व तो एक ही है। अब उस तत्व को आप कितने ऊर्जा में बदल पाते हैं, यह सब हम सबके ऊपर होता है। और मित्रों, यह आप मानकर चलें कि कोई भी वस्तु जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, कोई भी वस्तु नुकसान पहुंचा रही है, उसमें हमें फायदा पहुंचाने की भी ताकत है। लेकिन आप इसे इस रूप में मत ले लीजिएगा फ्रेंड्स कि शराब हमें नुकसान पहुंचाती है तो उसमें फायदा पहुंचाने की भी ताकत है, ड्रग्स नुकसान पहुंचाती है तो उसमें फायदा पहुंचाने की भी ताकत है, नॉट एट ऑल। लेकिन ड्रग्स तो ड्रग्स है, उसका बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है कि औषधि जगत में इस्तेमाल किया जाता हो। अल्कोहल का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता ही है, आप जानते हैं। तो सवाल यही होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जा रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि वो है या नहीं है, सवाल इस बात का भी नहीं है कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वो किस मात्रा में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। और अगर मात्रा सही है, रूप सही है, समय सही है, उसकी प्रक्रिया सही है, तो मान करके चलिए कि वही ऊर्जा बन जाती है, महान ऊर्जा बन जाती है, छोटी मोटी ऊर्जा नहीं। और प्रेम तो मित्रों एक महान ऊर्जा है ही, क्योंकि इसमें जितनी ताकत है, मैं नहीं समझता कि मनुष्य के रूप में कोई दूसरी वस्तु, कोई ऊर्जा ऐसी हो सकती है जो उसे फायदा पहुंचा सके। मनुष्य को कोई दूसरी ऊर्जा इतनी ज्यादा लाभकारी नहीं हो सकती जितना कि प्रेम हो सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब प्रेम की ऊर्जा के बारे में, प्रेम और ऊर्जा के बारे में जो मुझे आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी वो मैंने की है। आप लोग अपनी तरफ से इस विषय पर सोचें, और अगर कुछ नई बातें आप लोगों को मिलती हैं, कुछ नए संदर्भ या नई समस्याएं या नए कोण आपको दिखाई देते हैं, तो प्लीज आप सब मुझे लिखें। हो सकता है कि मैं उनके फिर से प्रत्युत्तर के तौर पर लाइफ मैनेजमेंट में कुछ बात कहूं। तो मित्रों, आज शुक्रवार है। अब इसी के साथ ही 2 दिनों के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।